आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کی رائے آج بھی کچھ پکچرز ہوں گی اور انشاءاللہ مبلغین کا پینل حسب معمول ہمارے ساتھ ہے مولانا عدنان مدنی چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا خالد امیر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مولانا راشد نور مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عبد الواجد مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ ان کی ماہرانہ اور تجربے کے بحاف پر رائے ہوگی انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو اس سے مختلف چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے آخر تک ہمارے سلسلے کے ساتھ شامل رہیے اللہ نے چاہا تو خوب ڈھیروں ڈھیر باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہمارا جو سلسلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایج لمٹ سے بھی آزاد ہے جیسے بوڑھوں کے لیے الگ سلسلے بچوں کے لیے الگ سلسلے تو اس سے بھی یہ آزاد ہے آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ پکچر سے آغاز کریں گے لیکن پہلے اپنے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں پکچر کی طرف جی پکچر بڑی کلیئر ہے جی درخت دکھایا گیا ہے سبزہ دکھایا گیا ہے اور ایک صاحب جو ہیں وہ شاید سیڑھی کے ذریعے ایک شاخ پہ چڑھ تو گئے لیکن پھر سیڑھی نہ جانے کیوں ان سے بے وفائی کر بیٹھی اور اب وہ لٹکے پڑے اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کی اپنے طور پہ خیال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں چلیں عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے
جی مہروز بھائی یہ تصویر میں ایک صاحب جو ہے کلہاڑا چلا رہے ہیں
جی
اور ایک صاحب جو ہیں وہ شاخ سے لٹکے ہوئے ہیں جی تو آپ نے بجا فرمایا کہ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو صاحب مصیبت میں ہیں ان کی مدد کرنے کی نیت سے یہ صاحب کلہاڑا چلا رہے ہیں تو ان کو یہ سوجی ہے کہ میں اس درخت کو ہی گرا دوں تاکہ
وہ نیچے آ جائے درخت بھی نیچے آ جائے وہ صاحب بھی نیچے
جی
آ جائے
جی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت اچھی ہو لیکن یہ صاحب کو بیوقوف لگتے ہیں کہ جو دوسرے کی مدد کرنے کی غرض سے اپنا بھی نقصان کریں گے اور اس آدمی کا بھی نقصان کریں گے ان کا نقصان تو ایسے ہوگا کہ جب وہ صاحب دھڑام سے زمین پہ تشریف لے آئیں گے تو ان کی کوئی ہڈی کو پسلی ٹوٹنے کا خدشہ ہے اور ان کا اپنا نقصان ایسے ہوگا کہ یہ جس طرح سے درخت کو کاٹ رہے ہیں تو یہ درخت جب گرے گا تو انہی کے اوپر گرے گا اور اگر صحیح طریقے سے گر گیا تو پھر ان کا کچھ بھی نہیں بچے گا
ٹھیک
تو زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کام اچھی نیت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کام کی بنیادی ابجد انہیں معلوم نہیں ہوتی جس کام کے بارے میں وہ صحیح سے جانتے نہیں ہیں فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے اس کو معدے میں درد ہے اور کوئی صاحب جو ہیں وہ اچھی نیت کے ساتھ ان کو کوئی ایسی دوا دے دیں کہ جس دوا کے بارے میں ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ ان کے موافق آئے گی یا نہیں تو پھر وہ بعض اوقات دوا الٹی پڑ جاتی ہے اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں تو زندگی میں ایسے دوستوں سے ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو بیوقوف ہوتے ہیں اور وہ بیوقوفی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر جاتے ہیں کہ جو آپ کو پھر ساری زندگی پریشان رکھتا ہے اس کی اگر ایک اور مثال عرض کروں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کہیں رشتہ ہونے لگتا ہے تو دو خاندانوں میں رشتہ کروانے کے لیے جو بیچ میں فریق ہوتا ہے وہ دونوں خاندانوں کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھ نہیں پاتا تو وہ ایک بے جوڑ قسم کا جوڑ ہو جاتا ہے
ठीक,
तो वो जो इस बेजोड़ का जो जिम्मेदार होता है वो बीच वाला शख्स होता है,
मिडिलमैन होता है,
वो मिडिलमैन होता है कि जो अकल की कमी से या तजुर्बे की कमी से या उसको अपने मुआवजे की फिक्र होती है, भाड़ में जाएं दोनों फैमिलीज़, तो उसने तो बस ये है कि दोनों का की शादी हो जाए और मुझे मेरा मुआवजा मिल जाए। तो वो इस तरह से जो है आखिर में दोनों ख़ानदानों के लिए तबाही, बर्बादी और परेशानी का सबब बनता है।
बिल्कुल,
क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बेशुमार चीज़ों को देखना पड़ता है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं, कहीं कास्ट देखी जाती है, कहीं लैंग्वेज देखी जाती है, कहीं कल्चर देखा जाता है, कहीं एज को देखा जाता है, कहीं पेशा देखा जाता है, कहीं रंग देखा जाता है, कहीं जो है वो चाल चलन देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने के बाद ही वो ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो आगे चलती है। तो अपने आप को किसी बेवकूफ़ के सुपुर्द ना करें,
ठीक,
बिलखुसूस ज़िंदगी में जो मामलात बहुत नाजुक होते हैं तो उसमें फूंक फूंक कर कदम रखें और बड़े गौर व फिक्र के बाद कोई फ़ैसला करें।
यानी वो जो कहा गया है कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, कि दाना दुश्मन से तो बहरहाल आप बच ही जाएंगे, अकलमंद दुश्मन से तो आप जैसे तैसे बच ही जाएंगे, लेकिन बेवकूफ़ दोस्त आपकी हिमायत करते करते आपको ही गढ़े में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देगा और फिर आपका दम निकल जाएगा। तो बहरहाल अब्दुल वाजिद भाई ने जो नुक्ता दिया बड़ा वाजे है, पॉइंट वाजे। राशिद भाई की तरफ बढ़ते हैं, राशिद भाई मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं इनको पेड़ काटने से मुस्कुराहट आ रही है या उनको लटकता हुआ देख के मुस्कुरा रहे हैं। जी राशिद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे?
मेहरोज भाई, तस्वीर देखने से मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि ये शख्स जो ऊपर चढ़ा है और शाख के साथ लटका हुआ है, बज़ाहिर लगता ऐसा है कि सीढ़ी की मदद से ये ऊपर गया
जी,
और उसके बाद सीढ़ी किसी वजह से गिर गई।
ठीक है,
अब जिस सहारे से ये ऊपर गया था वो सहारा इसे चला गया।
ओ हो हो हो,
तो जिंदगी में भी बाज़ुकात ऐसा होता है कि जो बंदा सहारों के जरिए ऊपर जा रहा होता है ना, वो सहारे बाज़ुकात धोखा दे जाते हैं, और जो अपने बलबूते पर ऊपर चढ़ता है, तरक्की करता है और दुनिया में नेक नामी इख्तियार करता है या फिर वो कामयाबियां हासिल करता है, तो ये कामयाबियां यूं समझिए कि उसे धोखा नहीं देती, इंसान को तजरीबात सिखाते हैं। वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है, बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला,
वाह,
बख्शा है ठोकरों ने संभलने का हौसला, हर हादसा ख्याल को गहराई दे गया।
वाह,
तो आदमी
अच्छा,
जो
ये शेर की हद तक अच्छा है, ये मैं आपको बता दूं, बाद लोगों का ये शौक भी होता है कि उन्हें हादसे चाहिए होते, उन्हें बहुत गहराई में जाना होता है और बाज़ों का इतनी गहराई में चले जाते हैं कि फिर वापसी नामुमकिन हो जाती है, तो इतना गहरा भी नहीं जाना जी।
तो इससे मैं जो मैसेज यही देना चाहूँगा कि इंसान अपने बलबूते पर जब इंसान कोशिश कर रहा होता है, मेहनत करता है, तो एक तो तजरीबात उसको होते हैं, मुशाहिदात वो उसके सामने आ रहे होते हैं, उसे लोगों के अंदाज़ का पता चलता है, रवैयों को वो देखता है, अपने जब बेगाने होते हैं वो उसके सामने आ रहे होते हैं, किसी ने उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया होता है, किसी ने उसे ताने दिए होते हैं, तो जब इंसान इन सारी चीज़ों को देखते देखते कोशिश करता है, मेहनत करता है और बुलंदी तक पहुंचता है, तो फिर उसे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और जो दूसरों के सहारे कभी सिफारिश के जरिए, कभी जनाब पैसे के जरिए या कभी किसी और धोखे के जरिए इंसान जो मकाम पा लेता है, तो नतीजा ये होता है कि ये चीज़ें बिल आखिर जाहिर हो जाती हैं। जब जाहिर होती हैं तो फिर क्या होता है कि एक तो उसकी इज्जत वो खाक में मिल जाती है, लोगों पर उसकी गलतियां वो जाहिर हो जाती हैं और लोगों को पता चल जाता है कि जनाब ये सिफारशी है, ये खुद से यहां तक नहीं पहुंचा बल्कि किसी के जरिए से यहां तक पहुंचा है। तो इंसान को चाहिए कि खुद मेहनत करे, कोशिश करे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखे, तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम जो कामयाबी इसे मिलेगी तो इस बात पर इसे फ़ख्र भी होगा और दुनिया में भी ये नेक नामी का सबब बनेगा।
ठीक है राशिद भाई, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि बेसाखियों के सहारे पे जो चलते हैं तो वो बेसाखियों के फिर मोहताज भी रहते हैं, लेकिन बाहैसियत इंसान अगर हम देखें तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें
जी,
या हमें सपोर्ट मिले, ये ज़रूरी भी होता है।
ठीक,
तो आपने एक पहलू तो बयान किया कि उसके डिपेंडेंट ना रहें, बहुत अच्छी बात, लेकिन जो सहारा दे सकता है क्या उसे अपना कंधा हटाना चाहिए?
नहीं मेहरूज भाई, ये दूसरा पहलू है जो आप बात करें ना। देखिए मैंने एक पहलू को यूं लिया कि इंसान को सहारों की तलाश में रहना है।
सही बात की, वैलिड बात की।
दूसरा ये है कि जो सहारा दे सकता है उसे बिल्कुल सहारा देना चाहिए। इसी तरह जो अच्छी सिफारिश कर सकता है जिससे किसी का वाकई मुस्तकबिल बन सकता है, जायज हक उसे मिल सकता है, ये बिल्कुल करना चाहिए। बल्कि कुरान पाक में इसके बारे में तो तरगीब मौजूद है कि जो किसी की अच्छी सिफारिश करता है तो उसके लिए उसका हिस्सा होता है। हाँ, बुरी सिफारिश से ये मना किया गया है कि वो इसका हकदार ही नहीं, और आप सिफारिश करके उसे उस जगह पर पहुंचा दे जिसका वो हकदार नहीं है और किसी दूसरे का हक मारते हैं, ये गलत है। तो इंसान जब दूसरे के लिए कुछ कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए।
तो जहां आप काम आ सकते हैं काम आए, लेकिन अगर कोई आपके काम आ रहा है तो आप भी जो है ना अमर बेल ना बन जाए उसके लिए, कि सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ चुपक ही जाए। अब वो ना हो तो फिर आपका भी कोई किरदार और करेक्टर और हैसियत बाकी ना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खालिद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे?
अर्ज़ ये करेंगे कि कुछ लोग दिखावे की मदद कर रहे होते हैं। कोशिश तो वो ये करते हैं कि लोग बस ये जान जाएँ कि मुश्किल के वक्त में भी साथ खड़ा था, लेकिन वो साथ खड़े होकर कर क्या रहा था? आग में पानी डाल रहा था या उसको ईंधन प्रोवाइड कर रहा था? ये महसूस नहीं होने देते। अब ये बंदा देखने को तो यूं मदद ही कर रहा है कि बंदे को नीचे ही उतारेगा, लेकिन बंदे की मदद करने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा था कि थोड़ा अराउंड का जायज़ा ले लेता कि इर्द गिर्द है क्या, इसको कोई और चीज़ मिल जाती जो दरख्त को काटने से ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन होती इस परेशानी से बंदे को या अपने भाई अपने दोस्त को निकालने के लिए
जी।
लेकिन बाज लोग जज्बात में आकर मदद करने की कोशिश करते हैं, बस अभी जैसा देखा तो वन शॉट जो पहला ख्याल आया उसी पर सारा फैसला कर दिया जाए, और उस पर फैसला करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि बस यही हल था, और फिर बाद में अफसोस कर रहे होते हैं
जी।
हो सकता है ये बचाने ही आया हो और ये दरख्त काट कर इसे बचा ले, लेकिन बाद में अफसोस करेगा कि यार सीढ़ी भी तो थी, काश मैं इसे पहले देख लेता। ऐसे ही बाज़ अफराद रिश्तों को या रिश्तों के दुख दर्द के हवाले से बड़े बेचैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस्तराब में ही होते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मेरी अकल पर बिल्कुल पर्दा आ गया था, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, और मेरी वाइफ ने इस तरह का काम किया था और मैंने तलाक दे दी, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। तो ये इतने जज्बाती होने की ज़रूरत क्या थी? क्या जो भी मसला था, कुछ कह दिया था आपको, आपकी मर्ज़ी का काम नहीं किया था, बीसियों मामलात हो सकते हैं, लेकिन क्या उसका हल इन अल्फाज के साथ ही था? क्या ये अल्फाज उस दुख का मदावत थे, उस ज़ख़म का मरहम थे? जब ये नहीं थे तो ये इस्तेमाल क्यों किया गया? जब मदद के लिए सिर्फ यही एक तरीका नहीं था तो फिर दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाया जा सकता था, दूसरी चीज़ को सोचा जा सकता था, दूसरे रिसोर्सेज तक पहुंचा जा सकता था। इंसान कभी अपने आप को थोड़ा सा वक्त दे, अपने आप को वक्त दे, किसी मामले में पड़ा है तो थोड़ा सोच ले कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वो दूसरा ऑप्शन उसके लिए काम का हो सकता है और कम नुकसानदेह हो सकता है। अखफ्फुल बलियतैन एक लफ्ज कहा जाता है, दो परेशानियाँ हैं तो उसमें से कोई छोटी परेशानी को बंदा इख्तियार कर ले। जरूरी थोड़ी है कि मतलब आपने जानकर ऐसी बड़ी मुसीबत पे छलांग लगानी है कि जिससे आप ही की परेशानी बड़ी हो। एक और बात इसी तस्वीर के सिनेरियो में मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, मेरे उसमें बसा औकात रिसोर्स
यहाँ पे मैं बात कर दूं खालिद भाई, फिर आप दूसरी बात भी कीजिएगा। आपने कहा कि बड़ी और छोटी मुसीबत या मुशक्कत, तो एक बात कही जाती है कि ज़िंदगी कभी भी परेशानियों से आजमाइशों से खाली नहीं हो सकती और किसी की भी नहीं हो सकती। तो कामयाब इंसान यानी मर्द मैदान कौन है? मर्द मैदान वो है कि जो उस मुशक्कत, उस आजमाइश और उस तकलीफ को डील कैसे करता, चॉइस कर सकते हैं आप। यानी आपके बस में ये नहीं है कि आप मुसीबतें और परेशानियां ख़त्म कर दें, आपके बस में सिर्फ ये है कि उस मुसीबत और उस मुश्किल को डील कैसे करें। जो जितने अच्छे तरीके से डील कर लेता उसको, उस मुसीबत को, उस परेशानी को, तो वो उतना कामयाब होता है। तो आप देखें जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में हमें इसके जो है वो नजारे नजर आते जी। खालिद भाई दूसरी बात,
पहली बात ये कि फौरी तौर पर मदद की जाए कि लटका हुआ है मेरा भाई बचा लिया जाए इसको, तो जनाब जो पहला आसरा नजर आया वही कर दिया। और दूसरी बात यहाँ पर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि कभी कभार रिसोर्सेज का ज़्यादा होना भी आपके लिए आजमाइश होता है। अगर सिर्फ ऑप्शन सीढ़ी ही होता, कुल्हाड़ी ना होता
जी,
तो दरख्त कटने से बच जाता, ये बंदा इस मुशक्कत से बच जाता। सिर्फ एक ऑप्शन होता, ये उसी को अवेल करता, तो सीढ़ी को इसने अल्टीमेटली, चाहे कितना कुन जहन हो बंदा, लेकिन इसको ये समझ आ जाता कि यार सीढ़ी को अगर सीधा दरख्त के साथ लगा दिया जाए तो बंदे की मदद की जा सकती है। तो कभी कभार महदूद जराए होते हैं तो बंदा परेशान हो रहा होता है, लेकिन महदूद जराए उसकी तरबियत भी कर रहे होते हैं, उसको एक काम से ज्यादा असबाब तक पहुंचाने के लिए गोया एक ट्रैक दिया जा रहा होता
है। खालिब, ऑप्शन ना होना भी ना बाज़ुकत नेमत साबित होता है।
क्या बात,
ऑप्शन ना होना भी नेमत साबित होता है कि आप देखें जमजम का जो कुआं निकला है,
वाह,
तो ऑप्शन नहीं था,
बहुत आला।
ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत क्या थी, हिकमत क्या थी, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ज़ाहिरी असबाब को अगर देखें तो ऑप्शन नहीं था, तो वो खारी की आदत हुआ और मौजज़ाती तौर पर जमजम का कुआं बरामद हुआ, जिसका फैजान आज भी जारी। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जी अदनान भाई।
महरोज़ भाई, एक ज़रबुल मसल है, कहा जाता है अकल बड़ी है भैंस। बाज़ लोगों का मिजाज ये होता है, उन्होंने तिनके को शहतीर बनाना ही होता है, काम पल भर में हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या करना होता है, जब तक वो अपनी तबीयत को जाहिर ना कर दें कि मैं बात का बतंगड़ बनाने वाला शख्स हूँ, उस वक्त तक उन्हें सुकून नहीं आता। ये एक शख्स है जो बेचारा उस पर दरख्त पर चढ़ तो गया है,
मिट्टी को पहाड़ और हवा को तूफान बना दे।
अरे वाह, क्या बात है जी आपकी। बात यह है कि ये इसको दरख्त के ऊपर चढ़ना आता है, लेकिन ये शख्स बेचारा उतरना नहीं जानता कि उतरा कैसे जाता है। और ऐसे बहुत सारे अफराद होते हैं, काम शुरू कर लेंगे, अब वो पहुंच गए हैं ऊपर, तो ऊपर तो वो चला गया, अब नीचे आने का फन नहीं आता उसको।
आपकी बात पे एक जुमला मोहतरीदा, बल्कि मुआफिन जुमला लीजिए आप, कि जैसे नई नई जब बाइक या गाड़ी चलाना शुरू करते ना, अब तो काफ़ी ऑटोमेटिक आ गई, तो शायद वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई और प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमने जिस ज़माने में सीखी और चलाई ना अदनान भाई, प्रॉब्लम क्या होता था, एक गाड़ी स्टार्ट कर ली, गियर डाल दिया, गाड़ी निकाल ली, अब उसको रिवर्स कैसे लेना है ना, ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता था, उसे रोकना कैसे, ये बड़ा प्रॉब्लम होता था। आपकी बात से आया कि स्टार्ट तो कर दिया
जी,
अब उसे एंड पे कैसे ले गया जी।
तो ये एक शख्स है जो बेचारा चढ़ गया है दरख्त पर और इसने अब उतरना नहीं जानता। अब ये दूसरे अपने दोस्त को या जानने वाले को या अजनबी को ये इसने मदद के लिए पुकारा है कि भाई मुझे उतारो। अब सीढ़ी जाहिर सी बात है ये खुद लगा नहीं सकता जो दरख्त के ऊपर है, अब किसी दूसरे आदमी की मदद की ज़रूरत है। तो ये वो अकल बड़ी या भैंस वाला मामला है, ये जो शख्स है इसके नज़दीक भैंस बड़ी है, अकल बड़ी नहीं
इसके नज़दीक।
ये जो कुल्हाड़ा लेकर उसको नीचे उतारने
के लाल शर्ट वाला
जी जी, होना ये चाहिए था कि वो आदमी मदद का तलबगार है, आपके पास सीढ़ी मौजूद है, उसको लगाओ और उस आदमी को नीचे उतार लो। लेकिन ये अपनी तबीयत से, यूं कह लें कि और अपनी आदत से मजबूर है बेचारा। अब इसने क्या किया, वो जो आसानी से काम हो सकता था उसको आसानी से, कान को इधर से पकड़ने के बजाय यूं घुमा के फिर पकड़ूंगा तो भाई काम तो पकड़ा जाएगा, लेकिन मसला ये जो इतनी मुशक्कत उठाई जा रही है इस काम के लिए, वो मुशक्कत उठाने जैसी नहीं थी। इसके लिए आप अपनी एनर्जी को ज़ाया ना करते, इसको किसी बड़े काम के लिए बचा कर रखते। आदमी को उतारना था, सीढ़ी लगाते और उसको नीचे उतार लेते, लेकिन इसने सीढ़ी वाला मामला जो था, वो जो ऑप्शन था, उसे इस्तेमाल नहीं किया और जनाब जो है वो दरख्त को काटने में मसरूफ हो गए हैं और अपनी अकल का इतना भी इस्तेमाल नहीं किया कि ये जो एनर्जी और वक्त यहां जाया कर रहा हूं, और वो बेचारा लटका हुआ है, पता चले थोड़ी देर के बाद हाथ उसके थक जाए और वो वैसे ही धड़ाम से नीचे आ गिरे। तो चाहिए ये था कि जो सीढ़ी है उसको लगाकर इस आदमी को उतारा जाता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी एक मामले में फंस जाते हैं या कोई काम करना होता है, तो उस काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बंदे को चाहिए अब इस बात का इंतखाब करे कि यहाँ इस वक्त में कौन सा ऑप्शन जो है वो मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। वही मतलब एक ही अंदाज, एक ही रवैया और एक ही तरीका कार सब जगह कारामद नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात आपकी वो जो एक आदत है مثال کے طور پر نہ کرنے کی عادت ہے کوئی بھی کام، بھائی یہ کام یوں کر، نہیں میں تو یوں ایسے نہیں کر سکتا، میں تو اس انداز میں، میری تو طبیعت نہیں ہے، میرا تو دل نہیں مانتا. بھائی آپ کوئی کام کریں گے بھی صحیح تو وہ کہتا ہے جی میں تو اپنی طبیعت سے مجبور ہوں. تو یہ جو طبیعت سے مجبور افراد ہوتے ہیں نا بیچارے جی، تو وہ لوگوں کے لیے پرابلم ہی کھڑی کرتے ہیں. اس لیے اپنا ذہن وسیع کریں اور کہاں کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا انداز اختیار کرنا ہے، اس کو بھی یوں کہہ لیں اختیار کرنے کی ضرورت بہت ہے. ایک یہ بات اس پر جو ہے وہ ایک اور انداز سے بھی گفتگو کی جا سکتی ہے.
سبحان اللہ.
کہ ایک شخص ہے وہ محنت مشقت کر کے ایک مقام اور مرتبے تک پہنچا ہے، اور یہ سیڑھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ترقی پر جانا پہنچنا وہ
تھرو
پراپر چینل ہے، وہ اپنے جو ہے وہ محنت مشقت مختلف سٹیپ اٹھا کر وہ پہنچا ہے. اب ایک شخص وہ ہے جو ایسا کام کرنے چلا ہے جس کی وجہ سے آپ خود تو اوپر نہیں جا سکیں گے، لیکن وہ بیچارہ جس کی زندگی، جس کی محنت مشقت سرمایہ سب کا سب لگ کر وہ ایک مقام پر پہنچا ہے، آپ نے ایک ضرب مارنی ہے اور بندے کو دھڑام سے زمین پر لے آنا ہے. تو یہ انداز لوگوں کو گرانے کا، جس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ وہ
ٹانگیں
کھینچنے والا جو انداز ہے کہ آپ کسی کی ترقی سے جیلس ہیں، خود ترقی کرتے نہیں اور دوسرا کوئی کر رہا ہے تو اس کو کرنے دینی نہیں ہے، تو یہ انداز بھی جو ہے نا وہ بندے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. آپ اگر کوئی کسی مقام مرتبے تک پہنچا ہے اور وہ واقعی اس کا حقدار ہے تو اس سے جیلس ہونے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے آپ خود بھی محنت کیجئے. اللہ کریم جس خالق و مالک نے اس بندے کو اس ترقی، اس مقام مرتبے تک پہنچایا ہے، آپ بھی اپنی ترقی کے ذریعے، محنت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ کریم آپ کی بھی مدد فرمائے گا جبکہ آپ درست انداز میں محنت کرنے والے ہوں.
واہ جی، ایک تصویر، کتنے سارے سبق اور مبلغین کی بات اور تصویر سامنے ہوتے ہوئے دو تین پوائنٹس میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دو باتیں تو لال شرٹ والے کے لیے، پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں ہے عمومی رستے کو چھوڑ کر کوئی یونیک رستہ تلاش کیا جائے. بے وقوف لوگ نہیں ہوتے جو ایک ہی شاہراہ پہ سینکڑوں اور ہزاروں چل رہے ہوتے ہیں. ان کے تجربات یہ ہوتے ہیں کہ اسی شاہراہ پہ آرام سے اور وقت پر تسلی سے پہنچا جا سکتا ہے. تو عمومی شاہراہ جو ہے اس کو ہر وقت چھوڑنے کی فکر نہیں لگی رہنی چاہیے کہ میں کوئی اپنی الگ راہ لوں، میں کوئی یونیک وے میں جاؤں. تو یاد رکھیے یہ الگ راہ، یہ یونیک وے جو ہے اسٹرینج وے بھی بن سکتا ہے آپ کے لیے، جیسے کہ یہاں پہ بن رہا ہے. دوسری بات تھوڑی سی میڈیکل کے حوالے سے کہ بعض اوقات کوئی ضرب لگتی ہے، کوئی انجرڈ ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس موقع پہ ہمارے یہاں وہ نیم حکیم کا تو دور نہیں رہا، سو کالڈ ڈاکٹرز آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ٹریٹمنٹس کرتے ہیں وہ بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. تو براہ کرم ایسے موقع پر آپ اپنا ڈاکٹر ہونا، یعنی میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو اوریجنلی آفیشلی باقاعدہ ڈاکٹرز نہیں ہیں، لیکن وہ اس میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں اور کیس بگاڑ دیتے ہیں، بالخصوص جو ہڈی ٹوٹنے کا، فریکچرز کا، اور یہ بالخصوص کمر کا جو معاملہ ہوتا ہے نا خالد بھائی، اس میں بعض اوقات ایکسیڈنٹ سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا کہ جتنا اس پیشنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں، اسٹریچر تبدیل کروانے میں، گاڑیوں میں ڈالنے بٹھانے میں جو اس کا بگاڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری زندگی اسے بھگتنا پڑتا ہے. تو فضول میں ہیرو بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی مدد ضرور کریں لیکن لیمیٹیشن کے ساتھ. اسی لیے وہ فرسٹ ایڈ کی جو بازو کا تربیت ہوتی نا، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو وہ تربیت ہوتی تھی باقاعدہ کہ کسی کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے رکھنا ہے، تو احتیاط کی جائے. اگر کوئی ایکسپرٹ بندہ ہے تو اسے کرنے دیں. آپ برائے کرم تھوڑا سا تصویر میں پیچھے کھڑے ہو جائیں، آ جائیں گے آپ بھی تصویر میں. تیسری بات جو ہے وہ گرے شرٹ والی کے لیے، بہت معذرت کے ساتھ یہ ان لوگوں کے لیے جو خاندان کے سربراہ ہیں، ادارے کے سربراہ ہیں، کسی لوگوں کے مجموعے کے سپروائزر ہیں، نگران ہیں، ان کے لیے جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھ میں سب رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کیا غلط ہو رہا ہے، لیکن ذرا نتیجہ آنے دو پھر خود پتہ چلے گا. تو جب نتیجہ آئے گا تو ممکن ہے اس نتیجے میں اس کی تنہ آپ کی بھی ٹانگ ٹوٹ جائے، کہ جب یہ درخت گرے گا نا تو اس لال شرٹ والے کی جو بھی غلطی ہے نقصان اس گرے شرٹ والے نے بھی ہونا ہے. تو وہ بیچارہ جو بھی غلطی کر رہا ہے، سیڑھی کو اگنور کر رہا ہے، راستے چھوڑ رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے، تو بھائی تم بھی ذرا زبان ہلا کے دو لفظ بول دو کہ بھیا یہ کٹنگ نہیں کرو، یہ سیڑھی اٹھا کے لگا دو، اسی سے چڑھو، اسی سے تو اترتا ہوں. तो क्या कह रहे होते, नहीं जी हमने साइड पकड़ ली है, हम बोलते नहीं है, इन्हें करने दो, इनको इनके हाल पे छोड़ दिया है। लेकिन जिनको जिनके हाल पे छोड़ दिया आपने, फिर उसका नतीजा जब आएगा तो भुगतना आपको भी पड़ेगा। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए।
मेरोज भाई, इस तस्वीर को देखकर एक और बात मुझे जो याद आई वो ये कि वो बंदा जो लटक रहा है, मुसीबत में है, और वो चाहता है कि लाल शर्ट वाला मेरी मदद करे, लेकिन लाल शर्ट वाला क्या कर रहा है, बजाय उसकी मदद करने के उसके जड़ ही को काट रहा है जिसके सहारे वो लटक रहा है। तो बाज़ुका जिंदगी में भी हम जिन पर भरोसा कर रहे होते हैं, जिनसे हम ये चाहते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा, वही बंदा जड़ें काट रहा होता है। तो इसलिए किसी पर भी भरोसा करने से पहले ये ज़रूर देख लिया जाए कि ये बंदा कहीं मेरी जड़ें तो नहीं काटेगा। अच्छा, बाज़ुकात ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में किसी लम्हे या ज़िंदगी में किसी वक्त में कुछ साल पहले हम उसके साथ गलत कर चुके होते हैं या हमारा झगड़ा हो चुका होता है, और फिर 10 साल 15 साल 20 साल के बाद उसी के साथ हम कारोबार कर रहे होते हैं या रिश्तेदारी का सिलसिला कर रहे होते हैं। तो वो बंदा जो है वो जहन से निकालता नहीं है बात, वो मौके की तलाश में होता है, इंतकाम की आग जल रही होती है और वो मौके की तलाश में होता है। इसके नज़ारे हमें नज़र आते हैं कि जब रिश्तेदारी हो जाती है तो बाज़ औक़ात ऐसा देखा देखी वाली बातें हैं कि लड़की का, जैसे आपकी बेटी है, बहन है, कोई भी रिश्तेदार होता है, उसकी जब शादी हो जाती है तो वो अगले दिन उसको तलाक देकर घर भेज देते हैं। वजह क्या बनी? वजह 20 साल पहले जनाब ये मामला हुआ था, बिजनेस किया, पार्टनरशिप की, तो वो नुकसान पहुंचा देते हैं। भी क्यों किया आपने ऐसा, मैंने तो आप परेशान किया था। तो पता चला जनाब आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले आपके वालिद साहब ने हमारे साथ यूं किया था या आपने इस तरह की ये बात की थी। तो जब किसी पर भरोसा कर रहे हैं आप, किसी से उम्मीद लगा रहे हैं, किसी पर एतिमाद कर रहे हैं, तो सोच लिया जाए कि आप किस पर भरोसा कर रहे हैं। ऐसा ना हो वो आपकी आस्तीन का सांप हो, वही आपकी जड़ें काटे और वही आपको नीचे गिराने के लिए इस तरह दरख्त पर कुल्हाड़े चला रहा।
राशिद भाई एक बात बताएं, तो जब किसी से आदमी कारोबार या मामलात करे तो उससे पूछ ले कि मेरी जड़ें तो नहीं काटोगे?
नहीं पूछे तो नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने देखे सेंस दिया है।
देखें अदनान भाई, ये बात मैं राशिद भाई के साथ हूं, मैं इस मामले में बात चीज नजर आ जाती है कि सामने वाला चाह क्या रहा है, या इसका पस मंजर जो होता है, या यूं कह लीजिए उसकी जो जहन की फतूर होता है, वो उसके अल्फाज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके हरकात और सकनात से जाहिर हो रहा होता है।
तो कुली रखनी पड़ेंगी
जी, बिल्कुल, जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर,
पहचान
जी। हाँ जी, बढ़ते हैं अगली पिक्चर की तरफ, और अगली पिक्चर जनाब हमारे सामने आ गई है। एक परिंदा है, छोटा सा चिड़िया कह लीजिए आप, और चार बैग्स हैं। अब इन बैग्स को आप कुछ भी नाम दे लीजिए, मंजर तो यही है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, जोर लगा रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उड़ नहीं पा रहा है। जी अदनान भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे आप इस परिंदे के बारे में और इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में?
मेरोज़ भाई, वो आदमी जो तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है किसी भी फील्ड में, उसे अपनी तरजीहात का तायुन करना होगा।
वेरी गुड।
और जाहिर सी बात है, बंदा उसी वक्त तरक्की कर पाता है। बाज़ चीज़ें वो हैं जो आप ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए साथ लेकर चलना जिनका नागुज़ीर है, लाजिम है, ज़रूरी है, लेकिन बाज़ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आपके साथ ना भी हों तो आप जो है वो आपकी ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी, आपका आगे बढ़ना मुतासिर नहीं होगा, आपकी जो रूटीन लाइफ है वो मुतासिर नहीं होगी। तो अपनी ज़िंदगी का, अपनी लाइफ का एक मिजाज बनाइए कि आप चीज़ों में तरजीहात करने का जो है वो आपके अंदर फ़न और मलका मौजूद हो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर आपका गुजारा नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर भी आप चल सकेंगे। बस चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे इसको मैं एक मुकद्दस सफ़र की जानिब जो है वो लेकर चलूँगा, जैसे मिसाल के तौर पर आपने गारे हिरा हाजरी देनी है,
सुभान अल्लाह,
और आपने चलना शुरू कर दिया है
जी।
अब एक तो अंदाज ये है कि आपने पानी की एक अदद बोतल रखी हुई है जो आपको रस्ते में जो है वो काम आएगी, और एक ये है कि आप होटल से आ रहे हैं, सामान अपना जो जरूरत का था वो आपने बैग वैग सारा ही पहन लिया है ऊपर, और अब आपने चलना शुरू कर दिया है, जबकि आपको मशवरा भी दिया जा रहा है कि बंदा खुदा इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, ये सामान ना तो आपके काम आएगा और ना इसकी जरूरत है, आप ऐसा कीजिए इसे रख दीजिए वहां, वापसी पे आकर ले लीजिएगा। लेकिन एक आदमी बजीद नहीं, मैं लेकर ही जाऊंगा, होगा क्या, ये अपने मकसद और मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा, کئی افراد ایسے جو ہے وہ رستے میں ملتے ہیں اس سفر پر جو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر رستے سے ہی وہ واپس آ جاتے ہیں. وجہ اس کی بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر جاننا تھا, آپ کو پتا یہ ایک مشقت والا سفر ہے, کچھ وقت بھی لگتا ہے, کچھ جو ہے وہ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے اور بندہ بعض اوقات اس کا عادی بھی نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پہلے سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آپ اپنی نیند کو پورا کرتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں, اچھا سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے کچھ فاصلہ جو ہے وہ اچھا خاصا فاصلہ طے کر لینا ہے, آپ نے جو ہے وہ اپنے کسی آرام میں بھی خلل نہیں آنے دیا ہے, ہر طرح سے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں بے فکر ہو کر بھی رہے ہیں. سورج نکل آیا ہے, اب لوگ جو تھے وہ اوپر پہنچ کر وہاں سعادت پا رہے ہیں اور آپ ایسے وقت میں نکلے ہیں, سفر کرنا شروع کیا ہے, تو اب آپ ہو سکتا ہے وہاں تک پہنچ جائیں, لیکن اس کے لیے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑے گی, وقت بھی زیادہ صرف کرنا پڑے گا, انرجی بھی زیادہ ہوگی, مشقت بھی زیادہ آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کیجئے, کس کام کے لیے کون سا وقت موضوع ہے, کس کام کے لیے کس چیز کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر سفر کرنا ہے آپ نے ٹرین کے اندر, تو اس کے لیے آپ کے پاس ریزرویشن ہونا ضروری ہے, ٹکٹ ہونا ضروری ہے, آپ کو سیٹ پہلے سے کروانا تھی. آپ جا کے اسٹیشن پر بیٹھ گئے ہیں اور ماشاءاللہ پورے جو ہے آل اولاد کے ساتھ, اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ڈبہ جس کے اندر ریزرویشن پہلے سے ہو چکی ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ پانچ سات افراد ہمیں بھی جو ہے نا برداشت کیا جائے اور مطلب جگہ بھی ہو, آپ سیٹ پر بھی بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے نہ تو پہلے ریزرویشن کروائی, نہ جو اس کے اور تقاضے تھے وہ پورے کیے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں میرے سے رقم لے لی جائے مجھے اور بٹھا لیں آپ. تو جس آدمی نے پہلے سے یہ کام کیا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے اس نے مشقت اٹھائی ہے, اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیا ہے, یوں کہہ لیں کہ اس نے ایکسٹرا جو ہے وہ کوشش کی ہے جو آپ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر پائے, تو اب آپ کو وہ نتیجہ ملے یہ ضروری نہیں ہے. ایسے ہی بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا فلاں مجھ سے وہ ناراض ہو گیا تھا, فلاں یہ کام رہ گیا ہے, یہ بھی رہ گیا ہے, یہ بھی ٹینشن ہے, یہ بھی ہے, زمانے بھر کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کمر بھی نہ جھکے, مجھے تکلیف بھی نہ ہو اور میں اونچی اڑان
بھی متاثر نہ ہو,
جی اونچی اڑان بھی بھر لوں, تو یہ کام نہیں ہونے کا. اگر آپ نے بھر بھی لی نا تو ایک دو بار پر مارنے کے بعد آپ زمین پر آ گریں گے. اس لیے اپنے آپ کو, یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہے, جب آپ بورڈنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں نا جہاز پر, کہیں آپ نے جانا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک, تو اس کے اندر جو ہے وہ وزن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو آپ کو نا وہ الاؤ تھا 30 کلو وزن اور آپ نے 50 کلو کا بیگ باندھ لیا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چلا جائے
اور میں ایکسٹرا پیسے پال لیا ہے
اور دوسروں کا وزن پال لیا ہے, بالکل ایسے ہی کچھ کچھ یاد آ رہا ہوگا آپ کو.
جی جی مجھے بہت کچھ یاد.
ہاں جی, تو یہ یوں کہہ لیں کہ خام خواہ کی جو آپ نے اپنی زندگی کو اجیرن بنایا ہے, یہ آپ کے لیے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. بزرگان دین اسی سے ایک جو ہے نا وہ سبق دیتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں آخرت کے سفر پر آپ کے لیے آسانی ہو, تو وہ جو فالتو بوجھ ہے نا, فالتو بوجھ سے مراد گناہوں کا بوجھ, اللہ کی نافرمانی کا بوجھ, اسے یہیں چھوڑ دیں, توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں اور ہلکے پھلکے ہو کر نیکیوں کا وزن لے کر, جو جتنا ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہوگا, وہ لے کر آخرت کی طرف سفر کیجئے.
کیا بات ہے جی, دنیا بھی بہتر بنائیے, آخرت بھی بہتر بنائیے اور فضول بوجھ سے جان چھڑائیے. جی خالد بھائی.
مہروز بھائی, ایک پرندہ ہے جس کے چونچ میں وزن باندھا نہیں گیا, وہ چونچ سے وزن اٹھایا ہوا ہے.
جی,
پیر بھی اس کے باندھے نہیں گئے کہ اس کو بیڑیاں ڈلی ہوئی.
جی, اس نے خود
بائی چوائس آیا ہوا ہے, بائی چوائس یہ کیا ہوا ہے. اب اگر اس کی چوائس یہ ہے کہ اس کے ساتھ مجھے اڑنا ہے, تو اس کی چوائس کو کیا کہا جا سکتا ہے, یہ دیوانے کا خواب کہلائے گی. اگر اس کو اڑنا ہے تو اس کو پہلے جو غلطی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے,
جتنا ہلکا ہوگا اتنا آسانی سے پرواز کرے گا. ہے بھی اختیار میں کہ اپنی چونچ سے وزن کو چھوڑ دے, اس کا وزن کم ہو جائے گا. پنجوں سے جو بیگ اس نے اٹھانے کی کوشش کی ہوئی ہے ان کو بھی چھوڑ دے, یہ آسانی سے اڑ سکے گا. لیکن انسان کبھی کبھار اپنے مختلف قسم کے حادثات, واقعات, کچھ چیزیں دماغ میں اس کی اٹکی ہوئی ہوتی ہیں جو اسے نہ صحیح سوچنے دیتی ہیں. اگر کوئی اچھی سوچ ذہن میں آ بھی گئی تو اس کو ایگزیکیوٹ کس طرح کرنا ہے وہ بیچارہ یہ سوچنے سمجھنے سے محروم رہتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اس نے پہلے ہی पाल रखी होती हैं, कभी माजी को सोचता रहेगा, कभी बेचारा अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अगर मैं गिर गया और अगर मैं उड़ ही नहीं सका और अगर मुझे किसी ने, मुझसे बड़े परिंदे ने उठा लिया, तो जब ये सारे वसवसे और ख्यालात और ये हुजूम उसके दिमाग पर तारी रहेगा या छाया रहेगा तो कभी भी उसको अच्छे ख्यालात नहीं आएंगे। मुश्किलात में जब अपने आप को खुद बंदा घिरा हुआ महसूस करेगा तो फिर वो कैसे उड़ सकेगा। तो इंसान को चाहिए पहले अपनी सोच के दायरे को दुरुस्त करे, अपने एक्शन के भी साथ जायजा लेता रहे, एक्शन को अपने जितना क्लियर कर सकता है उतना क्लियर करे, जितने की जरूरत है वो तो वजन आपको लेकर उड़ना पड़ेगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आप पंजे काट दो जिसकी वजह से आप अच्छा उड़ सकोगे, पर हैं उनको थोड़ा कम करवा लो उसकी वजह से अच्छे उड़ सकोगे, नहीं, पर जो है वो आपको उड़ने के लिए है, ये जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसकी पहचान आपको होनी चाहिए। एक्स्ट्रा की पहचान आप खुद ही कर सकते हैं, मजबूरी क्या है और जरूरी क्या है इनका फर्क आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। अगर आप सबको कहें कि नहीं बस इनसे भी निभानी है, हो सकता है ये भी काम आ जाए, हो सकता है ये भी काम आ जाए, तो वो होगा यूं ही कि आपने बैग इतना ज़रूरत से ज़्यादा भर लिया होगा कि वो फिर आखिर में आप बंदा ही ढूंढ रहे होंगे कि किसको मैं देकर अपना बोझ हल्का कर लूं। तो इंसान को हकाइक के साथ रहना चाहिए। अगर उड़ान ऊंची भरनी है तो फिर बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों से बिल्कुल आपको ना आशना बनकर गुजरना पड़ेगा। अगर हर एक से आप लगे रहे तो फिर हो सकता है कि जो काम, जो टाइम आपकी परवाज का है वो आप अलग से अलग में बर्बाद कर दें
जी।
वो आपकी फालतू अलग से अलग जो है ना, कभी कभार इंसान को ये भी मरवा देती है। अलग से अलग तो खैर क्या होती है, फजूल गप्पियां होती हैं जो उर्फ आम में कही जाए, लोग चाय पीने गए तो जनाब 3-4-5 घंटे फजर हो गए। बिल्कुल गॉसिप के लिए क्या कहे, फ्रूटफुल कभी रहे तो बहुत अच्छी, वरना अगर ना रही तो फिर इंसान को फंसवा ही देती है। इंसान को चाहिए कि महरूस भाई अपनी चीज़ों को मैनेज करे, बातों में भी कितनी बातें काम की हैं कितनी फजूल हैं उनको, काम की बातों को ले फजूल को छोड़े। हाँ हमारे यहाँ होता ये ज़रूर है और इस पर आपकी चॉइस है, गुलाब के साथ कांटे ज़रूर होंगे, आपका इंतखाब है ना कि आप गुलाब का फायदा कैसे उठाते हैं। जरूरी है कि जब आपने गुलाब को लेना है तो उसकी जो शाख है उसको पूरे हाथ से पकड़े, जब गुलाब लेना है तो उसके पकड़ने का भी तरीका होगा, वो हुनर भी फिर आपको सीखना पड़ेगा। अगर बाज़ नशिस्तों से फायदा उठाना है तो प्लस माइनस के साथ आप प्लस पर हाथ रखिए, लेकिन ये सारा काम होगा आपके फोकस के साथ। जब फजूल और ला यानी चीजों से आप जान छुड़ाएंगे तो अच्छी परवाज कर पाएंगे।
अपनी परवाज में आप रुकावट ना बनिए, खुद इस पे गौर कर लीजिए। हमारा एक उमूमी बिहेवियर ये है, एक जनरलाइज करके बात करूँ तो अपनी नाकामियों का मलबा किसी दूसरे पे डालना है। लेकिन ज़रा खालिद भाई की जो बात थी कि इस पे गौर कर लें कि आप खुद अपने तो दुश्मन नहीं, बाज़ औक़ात खुद हमसे बड़ा कोई दुश्मन हमारा होता नहीं। हमारी तरक्कियों की राह में, हमारे सुकून की राह में, हमारे चैन की राह में, हमारी दुनिया आखरत की कामयाबी की राह में बहुत बड़ी रुकावट जो होती है वो हम होते हैं, हमारा नफ्स होता है, हमारी ख्वाहिशात होती हैं, हमारी तरजीहात ना होना होता है।
आला साहब रहमतुल्लाह ताला का एक शेर याद आ रहा है इस मौके पर, कहते हैं कि मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं।
पहला मिसरा,
मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं, दर्दा में आप अपनी नजर का हिजाब।
अकबर,
क्या बात है, आला हजरत आला हजरत है। और सही बात है कि इस शेर पे बाद में गौर किया जाएगा, लेकिन समझ में ये आ रहा है कि शेर कमाल का है, यानी काबिल गौर है। आला हजरत की बातें समझना इतना आसान भी नहीं है, जहाँ बहुत आसान है वहाँ पे इतना आसान भी नहीं है। यानी आसान कहते हैं तो क्या है, सबसे ओला वाला हमारा नबी, और मुश्किल कहते हैं तो फिर चार जबानों में एक ही शेर बांध देते हैं, तो क्या कमाल है।
और
क्या
आला बातें हैं,
आला हजरत की आला बातें, क्या बात है राशिद भाई, आपकी भी आला बातें, आला हजरत से जो मोहब्बत करते हैं उनकी भी बातें आला हो ही जाती हैं, फैजान होता है। तो जी राशिद भाई आप क्या इरशाद फरमाते।
महरोज भाई मैं मुख्तलिफ राय रखता हूँ खालिद भाई और अदनान चिश्ती भाई की राय से, नहीं इस जाहिर बात है मेरी राय है क्योंकि आपकी राय है, ठीक है, आपने जी आपने मेरी राय पूछी है तो उस तौर पर मैं अर्ज करूंगा जी। मैं यहाँ पर अर्जो ये करना चाहूंगा, ये परिंदा है वाकई एक बुलंदी चाहता है, तरक्की करना चाहता है, लेकिन नीचे जो बैग नजर आ रहे हैं मैं समझता हूँ ये वो जिम्मेदारियां हैं, ये वो रिश्तेदार हैं, ये वो इसके यूं समझे कि अफराद हैं कि जो इसको ऊंचा उड़ने नहीं दे रहे। अच्छा, उड़ना भी चाहता है तो कोशिश कर रहा है, तो जिस तरह देखे पर इसके बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं
जी।
तो एक वक्त ये आता है कि इंसान भी इस अंदाज से बिखर जाता है।
ओ हो,
संभाल रहा होता है, इनको पाल रहा होता है, इनकी जरूरियात को पूरा कर रहा होता है, इनके लिए बहुत कुछ वो कर रहा होता है, माँ बाप हों, बहन भाई हों, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, दोस्त अहबाब हों, मोहल्लेदार हों, बहुत कुछ वो लेकर चल रहा होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी परवाज में भी कमी आती है। अब होता यह है कि इसके जो रिलेटिव जो अफराद होते हैं वो इसको ऊंचा उड़ने नहीं दे रहे होते, वो इतनी जिम्मेदारियों का बोझ इस पर डाल देते हैं कि ये बेचारा अंदरूनी तौर पर क्या कहते हैं कि इंतिशार का शिकार हो जाता है, टूट फूट का शिकार होता है, इसे बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे अमराज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी फिक्रें और सोचें इसको अंदर से बिल्कुल ऐसे खाली करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह कहते हैं ना दीमक की तरह इसको चाटना शुरू कर देती है। और एक वक्त यह आता है कि ये बेचारा जब नीचे गिरता है फिर उठ नहीं पाता, और फिर यही लोग जो इसको इसके सहारे यूं समझिए कि बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं उस वक्त ये इसको छोड़ भी देते हैं, एक तबका है, और दूसरा उस वक्त उनको शर्मिंदगी का भी एहसास हो रहा होता है, काश हम इसकी कदर कर लेते, काश हम अपने इस घर के बड़े का एहसास कर लेते, जितना ये रात दिन मेहनत कर रहा था, कभी इसकी नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उठकर काम पर जा रहा है, थका हारा रात को घर आ रहा है, कभी बच्चों की फरमाइशें, कभी बेगम की बातें, तो कभी माँ बाप की बेजा बातें, यानी कई ऐसी चीजें आ रही होती हैं इस पर। नतीजा ये होता है कि ये बेचारा सबको खुश करने के चक्कर में, सबकी जरूरियात को पूरा करने के चक्कर में ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूं इसमें जो घर वाले होते हैं, जो जिनकी ये जरूरियात को पूरा कर रहा होता है, उनको भी चाहिए कि इसका ख्याल करें, इनका ख्याल करें, ऐसा ना हो कि जिस दिन ये जो आपको साया किए हुए दरख्त है, जो परिंदा आपको गोया के आपके लिए साहिबान बना हुआ है, आपके लिए छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो तरक्की चाह रहा है, उसको सुकून फराहम कर रहा है, जिस दिन ये साहिबान आपसे हट गया तो ऐसा ना हो कि फिर आपको उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़े।
मेरी नेक तमन्ना है राशिद भाई, आपने जो बातें बयान की, हर ऐसे फर्द के साथ है जो इस तरीके की डीलिंग से और इस तरीके की कैफियात से गुजर रहा है, और आपको देख के पता चलता है कि माशाल्लाह अगर घर से सुकून हो, अतराफ में अच्छे दोस्त हों, अच्छे अफराद हों, तो चेहरे की रौनक और दिमाग की तरी बाकी रहती है, और फिर ऐसे ऐसे जौहर निकल के सामने आ रहे होते हैं कि जिनको समझने के लिए भी अक्ल व फहम की ज़रूरत होती है। सतही जहन का मालिक उन चीज़ों को समझ नहीं सकता। मैं समझता हूँ कि थोड़ी गुफ्तगू में अल्फाज ऐसे आ गए जो आम रूटीन से हटके हैं, तो इतना मार्जिन तो मिल ही जाना चाहिए। बढ़ते हैं अब्दुल वाजिद भाई की तरफ।
महरोज भाई, किसी शायर ने कहा है कि ऐ तायरे लाहूती, होती है उस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। तो जिंदगी में हर आदमी की जिंदगी के कुछ मकासद होते हैं, और फिर उसकी जिंदगी का लाइफस्टाइल उन मकासद के साथ कंपेटेबल होता है या नहीं होता।
ठीक,
अगर तो वो कंपेटेबल है तो फिर वो आदमी अपनी ज़िंदगी के उस मकसद को अचीव कर सकेगा, और अगर वो उसके साथ कंपेटेबल नहीं है तो वो फिर जो बनना चाहता है ज़िंदगी में वो नहीं बन सकेगा, कुछ और ज़रूर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक आलिम दीन बनना चाहते हैं तो आलिम दीन को मुताला भी करना है, और उसको सब्र और तहम्मुल के साथ अपने वक्त को किताबें पढ़ने में सर्फ करना है। तो अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि मैं आलिम भी बन जाऊं और किताबें भी ना पढ़ूं, तो ये तो ऐसी ही बात होगी कि कोई शख्स दरिया से पानी भरना चाहे और पानी भरने के लिए बजाय कोई बर्तन दरिया में फेंकने के, वो جال پھینکے تو جال میں پانی نہیں ٹھہرتا. تو آپ اپنی زندگی کے مقاصد اور اپنے لائف سٹائل کو ایک جیسا کریں, ہم آہنگ کریں, پھر آپ اپنے اس مقصد کو اچیو کر سکیں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ان کے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہوتی, اور ان بیچاروں کو احساس بھی نہیں ہوتا, اور وہ لوگوں سے یہ سوال کرتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے کوشش تو بڑی کی لیکن میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکا. تو اس میں وجہ ان کی بعض اوقات اپنی نادانی اور بیوقوفی ہوتی ہے. تو جو آپ بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور حقیقت کے دائرے میں رہتے ہوئے, زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا جو میرا مقصد تقاضا کر رہا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں. تو زندگی میں بعض اوقات آدمی حقیقت سے آنکھیں چراتا ہے, لیکن حقیقت سے آنکھیں چرا کر پھر آپ کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے.
زبردست عبد الواجد بھائی نے بات کی, اور یہاں پہ میں بھی ایک آخری بات کرنا چاہوں گا. ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات بیگیجز کے ساتھ اڑنا, وزن کے ساتھ اڑنا, پرواز کرنا مشکل ہوتا ہے. دوسری یہ کہ ہر پرندے کی پرواز اور حد بھی مختلف ہے. ہر پرندے کو اوج ثریا پہ متمکن ہونا, ٹھہرنا مل جائے, یا بادشاہ وقت کے جناب گنبد پہ ٹھہرنا مل جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. تو آپ کا قد, آپ کی صلاحیت اور آپ کی توانائی کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے اور کن کی نہیں دیتی, اس کا تعین ضرور کر لیجیے. میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ چڑیا جنگل میں, باغ میں یا کہیں پہ بھی اڑتی ہوگی, تو کیا جن کبوں کو ہم دیکھتے ہیں, جن عقابوں کو ہم دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتی ہو؟ جس گدھ کو ہم دیکھتے ہیں, یہ نہیں دیکھتی ہو؟ تو لیکن ہر کسی کی پرواز کے دائرہ کار مختلف. کسی دوسرے کو دیکھ کر آپ مشقت میں نہ آئیں. ہاتھی کتنا وزن اٹھا لیتا ہے یہ دیکھ کر گدا ہی یہ کوشش کر سکتا ہے کہ میں بھی اتنا وزن اٹھاؤں, اور کیونکہ وہ گدا ہے تو وہ کوشش کر سکتا ہے. لیکن ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنی کیفیات, اپنی طاقت, اپنا ہنر, اپنا فن, اپنی صلاحیتیں, اپنا محل وقوع اور اپنا دیگر جو چیزیں ہیں, جو ایلیمنٹس ہیں یہاں پہ معاون یا معاون نہیں ہوتے, ان سب کو پیش نظر رکھ کے کوششیں کرنی چاہیے, اور اپنی بساط بھر کوشش ضرور کرنی چاہیے, ہار نہیں ماننی چاہیے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ وزن ہی نہ اٹھائیں, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ذمہ داریاں ہی نہ اٹھائیں, اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی کفالت کا ذمہ ہی نہ لیں. ایک آزاد منش آدمی کی, عورت کی زندگی گزاریں. اسلام, اخلاقیات اور دنیا ایسے افراد کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں.